अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदामि कृष्णाय कृष्णचैतन्य तद्भक्ताय नमो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयामचर सप्रथमे हमें हमार परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद सुतसस्मद भक्ति प्रज्ञान कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडोत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी दंडोत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। आज आप लोग आज के आप नारा कृष्ण कंकाली
भूतेश्वर
महादेव
पोतरा कुंड
आदिकेशव और जन्मस्थान और फिर महाविद्या में এই স্থানেতে গিয়েছি। তার মধ্যে কৃষ্ণ জন্মস্থলী সেখানে বসুদেব দেবকী জেলখানাতে ছিলেন আর সেইখানেতে কৃষ্ণ বাসুদেব কৃষ্ণ নারায়ণ তত্ত্ব সেইখানে জন্মগ্রহণ করেন এবং বলেন যে আমি আমাকে নিয়ে গোকুলে দিয়া তখন বাসুদেব মহারাজ তাকে গোকুলে নিয়ে যান নন্দভবনে সেখানে কৃষ্ণ পূর্ণরূপেতে এবং তৎপশ্চাৎ যোগ মায়া ওখানে জন্মগ্রহণ করেন বসুদেব মহারাজ যোগমায়াকে নিয়ে আসেন আর তার অলক্ষিতভাবেতে দ্বিভিজ কৃষ্ণ চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে আত্মসাৎ করেন এইসব কথা বিস্তৃত রূপেতে বর্ণন হয়েছে যখন বসুদেব মহারাজ যোগমায়াকে নিয়ে আসেন তখন সকালের দিকে রাত্রি সময় কংস জোর করে দেবকীর কোল থেকে যোগ মায়াকে টেনে নে আর পাথরের উপরে মারবে পটকে। তখন দেবকী বহু অন্যায় বিনয় করছে, আর পুত্রগুলি মারা গিয়েছে কিছু বলে নেই, কিন্তু নাবেলা যে এই কন্যাটা আমার নয়, বিশেষ করে আদলা বদলি হয়েছে, তো ওই পুত্রকে যতদিন না পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মেয়েকেও আমরা মেয়েকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, কারণ ছেলেকে দিয়ে মেয়েকে আনা হয়েছে, এখন মেয়েকে দিয়ে তারপরে ছেলে আন। তখন আছাড় দিয়েছে আর হাত থেকে বেরিয়ে অষ্টভুজা দুর্গা হয়েছেন, বললেন যে রে কংস, তোমাকে মারবার জন্য অন্যত্র পায়দা হয়ে গেছে, তুমি আমাকে কি মারবে। তারপরে ওই কঙ্কালি যেখানে আজকে আপনারা গিয়েছিলেন সেইখানে তখন থেকে পূজিত হচ্ছে। আর কৃষ্ণ বলেছিলেন যোগমায়াকে, তুমি সর্বত্র পূজিত হবে, কোথাও দুর্গা কোথাও বিন্ধ্যাচল পাশিনী কোথাও কিছু বহু জায়গাতে পূজিত, আর লোকের মনোবাঞ্ছিত লৌকিক পদার্থ দিবে। তখন থেকে এই দেবী পূজা চালু দিয়ে হতে আরম্ভ, সকলের লৌকিক কামনা বাসনা। কঙ্কালির পরেতে ভূতেশ্বর মহাদেব, ভূত মানে প্রাণীগণের ঈশ্বর, তিনি উন্মুখগণকে ভক্তি প্রদান করেন, আর বিমুখগণকে তাহার মোহিনী মায়া দূর করে, দুর্গের মধ্যে বন্ধ করে দেয়, এই জন্য তিনি দুর্গা। সব দর্শন করেও যদি রঙ্গেশ্বর ভূতেশ্বর গোকর্ণেশ্বর পিপলেশ্বর দর্শন না হয় তাহলে পরিক্রমা পূর্ণ হয় না, আপনারা এইসবগুলি দর্শন করছেন। আবার মহাবিদ্যা যেখানে ওইখানে আশপাশে তখন মথুরা নগরী এইদিকে ছিল না, এদিকে শুধু ময়দান ছিল, রঙ্গেশ্বরের মন্দির ছিল, আর এইখানে উচ্চভূমিতে কংসকে বসবার জন্য সিংহাসন উপরে করা হয়েছে। আর কৃষ্ণ এইখানে কংসকে ধরে টেনে আর তাহার উপরেতে লাফ দিয়েছেন, সেটি মারা গিয়েছে। তো ওইখানেতে আশপাশেতে মথুরা ছিল, আর ওখানে সরস্বতী নদী প্রবাহিত ছিলেন, যমুনাতে তিনি মিলতেন। একদিন ওখানে এসেছিলেন নন্দবাবা অম্বিকাবন ওকে বল, আর ওইখানে বিরাট অজগর নন্দবাবা পায়ে ধরেছে আর গিলতে আরম্ভ করেছে, সব লোক অনেক চেষ্টা করছে ছাড়ে নাই। তারপরে কৃষ্ণকে ডাকেছে, কৃষ্ণ এসেই পায়ে ছুঁয়ে দিবাতে বাস মুক্ত হয়ে আর তাহার বিদ্যা ধরে শরীর ধারণ করেছে। এইসব লীলার স্থান হয়তো আমাদের তীর্থ মহারাজ পরিক্রমার সময় এইসব কথা বলেছেন। আবার কালকে আমরা এখানে আদি কৃষ্ণ বারা তারপরে শ্বেত বারা দর্শন করব, তারপরে অনন্ত পদ্মনাভ দীর্ঘ বিষ্ণু মথুরা দেবী পদ্মনাভকে দর্শন এইসবগুলি দর্শন হয়। বিশেষ করে আদি কৃষ্ণ বারা দুটি বারা শ্বেত বারা কৃষ্ণ বারা, কৃষ্ণ বারা হচ্ছেন আদি বারা, বারাহ রূপ ধারণ করে আর তিনি বেদকে প্রথমে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন, পৃথিবীকে হিরণ্যাক্ষ চুরি করে নিয়ে লুকিয়ে দিয়েছে পাতালে। বারাদেব পৃথিবীকে উপর রেখে নিয়ে আসছেন আর ওইখানেতে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা তার সঙ্গে বিরাট যুদ্ধ হলো আরম্ভ। বারাদেব তাকে ছেড়ে দিয়ে উপর পৃথিবীকে ধারাতলের উপরে তে রাখেন আর তারপরে তার সঙ্গে যুদ্ধতে বহু বছরের পর মারে। তারপরে কোনো সময় বেদকে বেদ জ্ঞানকে চুরি করে নিয়েছিল সব আর এর নিচে গিয়ে জলের ভিতরে চুরি করেছিল বেদকে। আবার শুক্ল বারা বারারূপ ধারণ করে আর বেদগুলিকে উদ্ধার করে। তারপরে কৃষ্ণ যখন মথুরাতে প্রবেশ করেন বৃন্দাবন থেকে আসবার সময় সেই সময় ছেলেরা জিজ্ঞাসা করল যে কংস তো মহাবলবান আর তুমি ছোট বালক কীরকম মারবে, তখন কৃষ্ণ বিরাট রূপ তাকে দেখিয়েছে বড় আকার রূপে চতুর্ভুজ রূপ বোধহয় চতুর্ভুজ রূপ খুব বিরাট লম্বা চওড়া দেখিয়েছেন। তখন সখাগণের বিশ্বাস হল হ্যাঁ মারতে পারবে আমার সব, কিন্তু ঐশ্বর্য ভাব আসেন এই তো প্রয়োজন ঐশ্বর্য ভাব অর্জুন জয়সা নেই আয়। তারপরে মথুরা দেবী আর এইসব যদি দর্শন হল আপনারা সব শুনবেন। আজকে কি বলা হবে আচ্ছা ট্রান্সলেট
Shri Guru and Vaishnavas, we performed our Mathura Parikrama on the day of Ekadasi. So today we went to Kankali Mahadev, Bhuteshwar Mahadev, Kankali Devi, Bhuteshwar Mahadev, Mahadev, Janmastali, then we completed our Mathura Parikrama. So there, Kankali of Kankali Devi, we heard how Krishna appeared here in Mathura. In a four-armed form, then he asked to Vasudeva Maharaj, take me to Gokul. So there, Vasudeva Maharaj took this Mathuraj Krishna to Gokul, where at the same time Yasoda Maya had given birth to Vrajananda Krishna and to Yoga Maya. Vasudeva Maharaj, keeping his Krishna there, returned in the dead of night with the daughter of Yasoda Mata, Yoga Maya. When Kamsa in the dead of night heard the crying of the child, he came down. And Devaki Mata tried in many ways to save the daughter. Oh, we should protect her, we should protect her. She is a daughter, she cannot kill you. But Kamsa was very cruel, he could not hear. Then he took the baby and went to bash her on the stone. But Kankali Devi flew from his hands and said, "Foolish fellow, how can you kill me?" That time she took a Astabush root, when she took a form with eight hands. Your killer, the person who will kill you, has taken birth somewhere else. Therefore there Krishna has offered some stuti, some prayers to Yogamaya. Oh, the foolish persons who are bewildered by your external energy will worship you in many ways and in your many forms, and you will fulfill the material desires of all of them. Then we came to Ujeshwar Mahadev. Without the darshan of and the mercy of Mahadev, especially the four forms of Mahadev which guard Mathura Mandal, Ujeshwar, we have had darshan today, Rangeshwar just here, Pibaleshwar Mahadev on the bank of Yamuna, and Gokhandeshwar. Without the darshan of those four forms of Mahadev, us Parikram cannot be successful. Therefore, Bhuteshwar. Bhut means Jivatma. He is the controller of all the Jivatmas in this world. Therefore, for those who are inclined towards the service of Krishna, Bhuteshwar Mahadev offers them the benediction of bhakti. For those who are against the service of Krishna, Bhuteshwar Mahadev cheats them by binding them with Maya. Today we went also to Mahavidapith. That time there are two raised parts of Mathura. Here is Kamsatila, and also there, behind there is Mahavidapith. There is also, at that time, the town of Mathura was mostly centered around there also. Here in Kamsatila is a very raised, even now it's a little bit raised, and Kamsa was sitting on there as he prepared the wrestling arena to finish Krishna and Balaram. Krishna jumped up there and threw Kamsa down and killed him. But another raised place is there where we went today, Mahavidapith. Now, at that time the Saraswati River was flowing there, but now it has become covered. That place is called Ambikavan also. In the time of Krishna, on the day of Akadasi, all the Brijvasis were performing their vrat there, their Akadasi vrat. In the middle of the night, one huge python came and took Nanda Baba by the feet and tried to eat him. The Brijvasis tried in many ways to get the snake to release Nanda Baba by beating him with sticks and fire, but the snake would not release Nanda Baba until Krishna touched that snake on the head with his lotus feet. Then that snake assumed his original form as a Vidyadhara and went back to his abode. Today we visited all those pastime places. Tomorrow we go to see the two forms of Varahadev, Krishna Varaha and Swet Varaha. But the original form of Varaha is Krishna Varaha, Varahadev in a blackish complexion. Tomorrow we'll hear how Hiranyaksha stole the earth and hid her at the bottom past Talatal. That time, Varahadev assumed a form and came to save the earth. He took the earth on his tusk and kept her very nicely on the surface of the ocean. Then a huge battle took place between Hiranyaksha and his Adi Krishna Varaha. Sometimes Hiranyaksha steals the earth and sometimes he steals the Vedas. But in both times, Varahadev comes to save. We also visited Dirga Vishnu. Dirga Vishnu means a very large form. When Krishna was coming here to Mathura, the cowboys were thinking, they had some doubt, "Oh Krishna, Kamsa is very huge. How are you going to kill Krishna?" Therefore, in order to dispel the doubts of the cowboys, Krishna took a very large, four-armed form, big and fat. That time the cowherd boy laughed. Yes, now we have providence. You can kill Krishna. But this comes up. But despite seeing the huge form of Krishna and the form of Vishnu, the cowherd boy never became afraid of Krishna in the mood of awe and reverence like Arjuna did.
जो हरि कथा बोल जन्म संबंध कम होते कृष्ण खाने गेले
के लिए मनोहारी बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ आकर के प्रकट होते हैं। जबकि मथुरा में कंस कारागार में देवकी वसुदेव देव थाने एक है, तब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो कि अंश सह अंश भागे अंश भाग के साथ यानी पूर्ण और पूर्णतर पूर्णतम भगवान के तीन प्रकाश है। उन प्रकाशों में जो कि पूर्ण प्रकाश है उस प्रकाश के साथ अंश भाग के साथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अवतरित हुए। जो कि देवकी और वसुदेव के सामने भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। सब विस्मयो फुल्ल विलोचनो हरि। वसुदेव महाराज भगवान श्री कृष्ण को देख करके बड़े विस्मित हो उठे, बड़े बड़े नेत्रों से देखने लगे। वसुदेव महाराज विस्फारित नेत्र भगवान श्री कृष्ण के देखते लगे। देवकी के यहाँ पर कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, जो कि 16 वर्ष के बालक जैसे प्रकट हुई और शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए, जो कि मस्तक पर किरीट है, कानों में कुंडल है, गले में कस्तु मणि, हाथ में बाजूबंद और कंकण आदि से सुशोभित, चौड़ों में नूपुर है, गले में बनवाला है। इस प्रकार पीताम्बर पहने हुए सांद्र पयोदत्सौभयम् जो नवीन बादल के समान भगवान श्री कृष्ण चंद्र यहाँ प्रकट हुए। उस समय बड़े विस्मित होकर के देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना की, बोले कि विदितो असि भगवान पुरुष प्रकटे पर। देवकी वसुदेव हाथ जोड़े प्रार्थना बोले कि हे भगवान, हे परम पुरुष प्रकृति अपि, हे परम ब्रह्म, हे स्वयं भगवान, आपने आज के हमारे सामने प्रकट हुए, आज आप हमारे सामने विदित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। हम सभी कंस से डरे हुए हैं, आपके पूर्वज 6 बालकों को कंस ने मार डाला है, इसलिए हम उनसे डरते हैं। और अभी अभी कंस आपके ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ के आएगा और मार डालेगा, इसलिए हम डरते हैं, कहीं आपके ऊपर प्रहार न करें। इसलिए हे भगवान, आप भक्तों के प्राणधार, भक्तों के हृदय संपन्न, आप अपने स्वरूप को छिपा लें, अपने को गोपन करें, नीचे के अपनी गोपन करें। तखन भगवान श्री कृष्ण की बोलते हैं, श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि एतद्वाम दर्शितम रूपम प्राय जन्म स्मरणाय मे। हे पितर, हे माता, मैंने जो अपना स्वरूप दर्शन कराया यह पहले जन्म का स्मरण दिलाने के लिए। आपने पहले जन्म में ऋषि और सुतपा के रूप में बहुत काल तक आराधना की है, तो उस समय मैं प्रसन्न होकर के आपको वरदान देना चाहा। उस समय आपने ये वर मांगा कि तुम्हारे जैसे हमें बालक, हमने देखा कि हमारे जैसे न तो हमारे समान कोई है और ना ही उससे बढ़कर के कोई होता है, असमूर्ण तत्व हूं, जो कि मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है, मेरे बराबरी करने वाला भी मेरे समान कोई नहीं है। अमान समान क्यों है ना, अमान थे बड़ा क्यों है ना, ताकि हमें निजे के ही दान कर ला, मैंने अपने को दान कर दिया, तब से मैं अपने को पुत्र रूप में दान किया कि आप ही के पुत्र बनकर मैं आया। पहले जन्म में मैंने पृष्णी गर्भ अवतार के रूप में अवतरित हुआ था, दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति होकर के आए हैं, तब उस समय मैं वामदेव होकर के आया, इस समय आप लोग देवकी और वसुदेव बनकर आए हैं, तो आप हमारे पिता माता हैं, मैं आप ही का पुत्र स्वयं भगवान हूँ, परात्पर सत्ता हूँ, मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूँ, आप कंस से डरे नहीं, हमारे हाथ में तो चक्र है ना, अभी आएगा तो हम चक्र से मार डालेंगे, परंतु आप इतना क्यों डर रहे हैं। फिर क्यों? उनके अंदर ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों बराबर रूप में शामिल हो गया है। इसलिए मथुरा भूमि जो है ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों समान समान रूप में, और ब्रजभूमि जो है प्रेम की भूमि माधुर्य की भूमि, वहां केवल विशुद्ध प्रेम माधुर्य, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का कोई भी ऐश्वर्य अपने स्वरूप को अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर पाए, और कहने जाए तो कोई माने ही नहीं। यशोदा मैया मैया ने दो बार कृष्ण का विराट रूप देख लिया, मुंह में भी विश्व रूप को देख ली, जो ब्रह्मांड देखा, परंतु यशोदा मैया ने माना नहीं। पर यहाँ जैसे कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया और प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव डर के मारे घबराए, उनको बालक रूप में गोदी में उठा करके लाल प्यार करेंगे ये भी नहीं हो पा रहा है। ऐश्वर्य भाव के कारण संभ्रम संकोच बुद्धि आ गई। भक्ति में दो प्रकार की भक्ति कही जाती है, एक ऐश्वर्य संभ्रम मूलक भक्ति और एक विश्रम भावमय भक्ति और एक संभ्रम भाव। तो संभ्रम भाव जहां पर होता है संभ्रम से संकोच, और वहां प्रेम शिथिल हो जाता है, इसलिए उतना प्यार नहीं हो पाता है। देवकी के हृदय में ममता होते हुए भी संभ्रम संकोच के कारण शिथिल हो जाता है, घट जाता है। परंतु माता यशोदा के हृदय में अगाध वात्सल्य प्रेम ऐश्वर्य को देख करके ऐश्वर्य को मानते ही रखी। प्रेम की समुद्र में वह एक तिनके के समान ऐश्वर्य, इसलिए ब्रज भूमि माधुर्य की भूमि हुई और मथुरा भूमि ऐश्वर्य और माधुर्य समानांतर रूप में घूमता फिरता है। इसलिए देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए, कांपने लगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ, जन्म जन्म में पुत्र बन करके आया, आप मुझे गोदी में लेकर के दूध पिला रहे, वात्सल्य प्रेम को दिखाए, वात्सल्य स्नेह ममता नहीं आ पा रहा है संधर्म संकट के कारण। भगवान कृष्ण ने कहा जब आप डरे हुए हैं तो अच्छा है, तो आप मुझे गोकुल में रख करके आइए और मेरे बदले में ये कन्या को उठा करके लाए। ये बात कह रहे हैं। इसके पश्चात जबकि हरिवंश में हरिवंश में ही कहा है कि प्राकृत शिशु बहुत देखते देखते भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक बन गए, अपने स्वरूप को छिपा लिया, बोले कि मुझे गोकुल में रख कर गया है। जन्म का रहस्य तो इस प्रकार है, ब्रह्म जानों के अनुसार गर्भ काले तु असंपूर्णे अष्टमे मासे ते स्त्रियं देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तथा। जिस समय देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया जाने कृष्ण प्रकट हुए, उसी समय ठीक एक ही समय में यशोदा माता ने भी कृष्ण को जन्म दिया। वहां पर गर्भ से जन्म हुए जो कि नाड़ी छेदन हुआ है। यदि गर्भ से जन्म नहीं लेते तो नाड़ी काटने का नाल काटने का प्रसंग कहां से आ जाता। इसलिए बिना और यहाँ तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, इसके पश्चात प्रार्थना स्तुति इत्यादि होने के पश्चात छोटे से बालक बने, और बनने के पश्चात वसुदेव महाराज तुम्हें ले करके जबकि गए हैं। आज हम लोग वसुदेव घाट भी दर्शन करते हुए आए हैं, जहाँ वसुदेव महाराज जी ने यमुना में पार किया भरी हुई यमुना। वहाँ जब महाराज जी सियाली के रूप में आए, आकर के पानी के ऊपर चलने लगे, उसे देख करके वसुदेव महाराज जी भी पानी पर चलने लग गए। चलते चलते पार किया और उस पर गोकुल में जा करके अपने बालक को रख करके आए, परंतु उनको समझने नहीं दिया जो कि श्रीमद् भागवत में यह हमारे आचार्य पादों ने ऐसा वर्णन किया है कि जिस समय यमुना पार हो रहे थे तब तो उस समय तीन भाग पार हो गए किनारे आने वाले हैं, तो इतने में जबकि यमुना जी का पानी बढ़ने लग गया। यमुना जी के पानी बढ़ने से अब वसुदेव महाराज जी हाथ ऊपर उठाने लगे, कृष्ण को ऊपर उठाने लगे, परंतु इतने में एक छलांग लगाए यमुना में गिर पड़े। अब यमुना में गिरते ही अब कृष्ण को टोटलने लग गए, तो नुस्त भर दोनों वर्ग के आचार्य लोगों ने दोनों तरह की बातें करते रहते हैं। जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग कहते हैं कि वहां तो मथुरा राज से कृष्ण वहीं पर अंतर्हित हो गए, और वहां से जो यशोदा नंदन है वहां आकर के वसुदेव महाराज जी के हाथ में वहां से चले उनको ले, और कोई कहते हैं जैसे श्री बल्लभपुरी के लोग कहता करते हैं उनके संप्रदाय के आचार्य लोग कि यमुना जी को बड़ी अभिलाषा है कृष्ण के चरण छूनेगी, इसलिए कृष्ण ने उनकी अभिलाषा को जान करके और छलांग लगा दी कि वहीं पर यमुना में एक बार यमुना ने उनको स्पर्श कर लिया। पर तो वहां वात्सल्य और श्रृंगार दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, यह तो संभव है। इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने कहा कि नहीं, असल में यह रहस्य है जो कि मथुरा नाथ श्री कृष्ण वही रह गए और ब्रजविलास श्री कृष्ण वहां से प्रकट होकर के चले, जो कि वसुदेव महाराज जी को वहां समझने नहीं दिया कि वहां पर जो यमज संतान हुए हैं एक बालक और बालिका के रूप में यशोदा मैया को जोग माया जी ने सुला दी। कृष्ण ने पहले ही आदेश दिया था गच्छ देवी ब्रजम भद्र, हे कल्याणी हे देवी तुम्हारा कल्याण हो, तुम ब्रज में जा मेरी अनुजा बन करके जन्म ग्रहण करना। पर उससे पहले जन्म के समय यशोदा मैया को इस प्रकार से नींद में सुला देना है कि उन्हें मेरा जन्म रहस्य भी पता नहीं लगना चाहिए, दूसरी ओर किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए मेरा जन्म रहस्य क्या रहेगा, और जितनी भी लीलाएं होंगी उसमें भी सहायता बनेगी। इस प्रकार जो माया जी को भेजा जो अनुजा छोटी बहन बन करके जन्म ग्रहण की, इसलिए इधर तो कंस ने क्या किया, दिन रात समय गिनते चले गए कि एक एक दिन गिनते जा रहे हैं कि एक महीना दो महीना तीसरे महीना ऐसे करते करते अब कंस सोच रहे हैं कि 10 महीना होने पर बालक का जन्म होगा, परंतु भगवान कृष्ण ने ऐसे चतुराई की 8वें महीना में जो कि गर्भ का पूरा भी नहीं हुआ उस समय प्रकट हुआ और कंस को ठग लिया। 8वें महीना में कृष्ण जन्म ले ली और यहाँ तो प्रकट हुए वहां पर जन्म। इस प्रकार मथुरा भूमि को देखा जाता है जो कि ऐश्वर्य और माधुर्य बराबरी में देखा जाता है। द्वारका में जो भगवान की लीला है वहां पर ऐश्वर्य प्रधान है, माधुर्य नीचे दब जाता है, और ब्रजभूमि जो है माधुर्य की भूमि है जहां पर प्रेम माधुर्य इतना ऊंचा उठा हुआ है कि ऐश्वर्य तिनके के समान नीचे दबा हुआ है। यद्यपि कहा है लक्ष्मी सतसहस्र संभ्रम सेव्यमान कि लक्ष्मी जी ब्रजभूमि की कैसी सेवा करती है कि सैकड़ों प्रकार से हजारों प्रकार से लक्ष्मी जी अपनी सारी संपदा ब्रजभूमि में उड़ल दी है, जो कि वैकुंठ की संपदा क्या है चिंतामणि और कल्प वृक्ष, परंतु यहाँ के ब्रज के ये धूल कण चिंतामणि है, और वो चिंतामणिया जो चिंतामणि है वो गोपियों के पैरों के नुपुर में पैजेब के काम में आता है और कोई काम ही नहीं है इतनी चिंतामणि। तो इस तरह से हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं कि भूमि चिंतामणि गणमणि को अमृतम, और जितने भी वृक्ष लताए हैं सब कल्प वृक्ष कल्प लताए हैं, जो वृषभानंदनी श्री राधा जी के भाव के द्वारा विभूषित है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि भागवत में रमा किरण अभूर्ण जब से कृष्ण का जन्म हुआ है तब से रमा लक्ष्मी जी की मूल पीड़ा स्थली बन गई है। इस प्रकार माधुर्य विलासी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में जाकर के लीलाएं की और मथुरा में 11 वर्ष 8 महीने तक ब्रज में लीलाएं की। उसके पश्चात मथुरा की लीलाएं हुई जहाँ की उन्होंने कंस का वध किया, देवकी वसुदेव को जेल खाने से मुक्त किया, महाराज उग्रसेन को बंदी से मुक्त कराकर उन्हें राजमुकुट पहनाया और इसी मथुरापुरी में ही जरासंध में 23 एक एक बार में 23 अक्षरणी सेना लेकर के आक्रमण किया तो उन सभी सेनाओं को पराजित किए। 18 बार में तो 18 बार ही उन सभी सेनाओं को पराजित किए। 3 करोड़ जवन सेना लेकर के काल जवन भी यहाँ आया और उन्हें मुजमुंद महाराज के द्वारा सब को भस्मीभूत करा दिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी पर भी यहाँ मथुरापुरी में भी लीलाएं करते हुए असुर संहार आदि भूभार हरण आदि लीलाएं की और ऐश्वर्य भाव को प्रकट किया। इसके पश्चात समस्त जदुवंशियों को साथ में उठा करके द्वारका में बसा दी और द्वारका की लीलाएं हैं। आगे चलकर के और सारी कथाएं होंगे। मैं अपना वक्तव्य यही रखता हूँ।
So briefly, Puja Bhakti Maharaj is talking about the appearance of Sri Krishna in Mathura Mandala. So, over there, the earth burned by the weight of so many asuras. The earth finally approached Lord Brahma for relief. So Lord Brahma, then by all the demigods, went to Ramachi Vaikuntha and offered prayers and appeared outside Vishnu. Lord Vishnu, a voice came to the heart of Lord Brahma. Soon my Prabhu, the Supreme Lord, Sri Krishna's Bhagavan, he will appear here in Mathura Mandala. Therefore, all you devas should take birth here in the Yadu monks, in the Yadu dynasty, to assist the pastimes of Sri Krishna. So, you know everything already. The 6 sons of Devaki were killed by Kams Maharaj. The 7th son, in Bhagavatam, describes to be a miscarriage. But that was actually Sri Sankarsan Ram transferring himself to the womb of Rini in Vrindavan. And finally came the appearance of the 8th son of Devaki, Krishna himself. 10 months he stayed in the womb of Devaki. And there he appeared in the prison house of Kams Maharaj. All the demigods came to that place today and were offering prayers to Krishna the womb. Satya, Ratam, Satya, Paramtri, Satyam. They offered many, many prayers. So when the time came for the appearance of Sri Krishna, he appeared in a four-armed form. With on his head he had helmet, a nice Vajanti mala of lotuses around his neck. On his body he was wearing many armlets, bracelets. He was covered by Pitambara. On his feet he had Nupur. He appeared as a 16-year-old youth, ever fresh, more attractive than millions of cupids, with a very, very dark complexion. In that four-armed form he held Sankachakra Garapadma, lotus, Sudarshan disc, conch shell and club. That time, very interesting thing. In Dwarka there is the complete predominance of the mood of opulence, and the mood of sweetness is quite covered in Dwarka. But here in Mathura, the mood of sweetness and the mood of opulence is 50-50, in equal proportion. Therefore the prayers of Devaki and Vasudev reflect that. They pray many things. You are the Supreme Purusham Pratikaparam. You are the Supreme Lord who is beyond material nature. Out of your mercy you have appeared here. They offered many, many prayers. But then alongside the prayers of opulence, they said, but we are also afraid because Kamsa has killed the six previous sons. Therefore, if you stay here, it's very dangerous for you. We are afraid like this. So their prayers reflect the mood of opulence and the mood of sweetness, both. Therefore, they pray, O Bhagavan, please conceal your form. Therefore, Haribans described that the Supreme Lord came in perfect tissue, like an ordinary baby form. Then Bhagavan ordered, O Vasudev Maharaj, take me there to Gokul. So Vasudev Maharaj, he took baby Krishna on his head and crossed the Yamuna here. Maharaj, I could not catch everything. So there are some conflicting arguments. What happened? One jackal was going across first to show Vasudev Maharaj the water here is very shallow. That jackal was Sankarshan. Therefore, was Yogamaya Devi. So some people say the water of Yamuna rose to touch the feet of Krishna. But Pujabhati is not saying in this there is not complete conception because Kalindi, she serves in the mood of Madhuri Ras. And there Vasudev Maharaj, he serves in the mood of Vatsalya Ras. Therefore there may be some conflict. Therefore our Goswamis have described because Swami described that Krishna disappeared in the Yamuna there.
उन्होंने अपना पैर थोड़ा सा नीचे लटका दिया और जमुना की उस पैर को छू करके कृष्ण ने जंप नहीं किया पैर लटका दिया
So then Krishna put his feet and touched the Yamuna and the Yamuna was satisfied and came down. So Krishna previously ordered Yogamaya to take birth there in Vrindavan as my smaller sister. So when Vasudev Maharaj went there, Yashoda could not understand she had given birth to Sukhdev.
वहाँ पर एक विचार बतलाया वहीं से मथुरेश कृष्णा वासुदेव नंदन रिटर्न बैक टू मथुरा एंड ब्रजेश यशोदानंदन नंदनंदन वहीं से आकर के वहाँ पर गए
Mathura's Krishna returned from there back to Mathura and Vrindavan came and back.
So,
that time Mathura's Krishna returned back here to Mathura and Vrindavan and Krishna was there manifested from that time. So comes Maharaj, he'd been waiting a long time. He'd been completely thinking of Krishna in the mood of fear. Actually comes as one of the first persons to know that Krishna would appear in this world. So since before the appearance of Krishna, he had been too much thinking of Krishna in the mood of fear. Bhagavatam describes he used to see the form of Krishna, Bhagavan Vishnu, with the Sudarshan chakra in his hand, everywhere. Therefore 10 months, first the seventh child he was waiting so many years. Then when he heard that the child was crying, he came down. Vasudev Maharaj had returned with Yogamaya on his head, and the rest of the Leela that is manifested here. So the main point being, here in Mathura, there is some mood of opulence mixed with the mood of Madhurya. There is some feeling of sankochpa, meaning some feeling of shyness, some feeling of restriction, a little bit lacking of mamata, some hesitation in the free flowing of emotion, because the mood of opulence is present here in Mathura. But in the mood in Vrindavan, there is that mood of opulence is completely colored by the mood of sweetness. There the Vrindavasis have no sankochpa, no feeling of hesitation towards Krishna. There are two types of bhakti, samaram bhakti and samaram bhava bhakti and vishram bhava bhakti. Samaram bhava means with hesitation, with some fear, and vishram bhava means no hesitation, complete seva and mamata.
Can you speak something? On Krishna Janma.
Mm-hmm.
Because we're hearing some of the intimate details, some of the secret elements of the pastimes of Krishna, but in Bhagavad Gita, and for the purposes of explaining this pastime and this lila for the people in general, for the wider audience we're attempting to introduce to this path of bhakti, they must first come to understand Krishna's description of his own birth and purpose for appearance from Bhagavad Gita. And in the fourth chapter, Krishna explains very clearly his general mission. I'd like to know, out of everybody here, how many of you are reading any part of the Gita and preaching to people about Krishna from this particular verse? Is anybody here preaching? Does anybody here sell books or preach? Huh? Raise your hands. I know Damodar Maharaj is. Some of the boys here. Anybody? Okay, one thing. We are here.
The purpose
of Krishna's appearance, as explained in Chaitanya Charitamrita, was to demonstrate to the entire world the beauty, the attraction, the unparalleled sweetness of the pastimes of Krishna in his Braj Leela, in his full original form as Shyama Sundara, Vrajendranandana, Nandanandana, Jashodanandana. And Mahaprabhu came to reveal that and to offer us this same look of Braj Prem. But Mahaprabhu exhibited the pastime of preaching, of teaching this to everyone, of attempting to liberate the souls. And he gave that order to his most confidential servants, headed by Nityananda Prabhu, to take that path up. And our Sampradaya has taken this mood on as its heart and soul. And our principal, our great acharyas, have all manifested this Madhavishta, this intense inner mood and desire to preach and spread this understanding out of compassion. Because they are tathagatic with the mood of Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu. So I was told to speak some about Krishna Leela, but Mahaprabhu and Krishna Leela are there the same. And this is my
गीता में कहा गया है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सिद्धं परित्रणाय विनाशाय च दुष्कृतां बट यू शुड नो आप लोगों को जानना चाहिए ये काम तो महाविष्णु भी कर सकते थे दैट
जॉब
इट कैन बी डन बाई विष्णु महाविष्णु सो दिस इज नॉट रियल कॉज यू शुड नो इसलिए भगवान के अवतार का कृष्ण का कारण ये नहीं ये तो विष्णु के द्वारा भी करा सकते थे चूँकि उसी समय में अवतार का भी भूभार का भी आया किंतु कृष्ण ने असुरों का संहार नहीं किया जरासंध को नहीं मारा या मरवाया कालजवन को वो नहीं कराया ये सब काम महाविष्णु के द्वारा ही संभव हो सकता था कृष्ण ने जो कंस को मारा कृष्ण ने नहीं मारा उनके भीतर में जो विष्णु तत्व है उसने मारा अंडरस्टैंड कृष्ण किल्ड रावण अघासुर बकासुर एंड अदर्स कृष्ण डज नॉट टच देम उनको उनके अंदर में जो विष्णु थे उन्होंने मारा और कृष्ण ने क्या किया कृष्ण ने क्या किया रस का आस्वादन किया 12 रसों का आस्वादन दास्य शक्र वात्सल्य मधु रस का विशेष करके रासलीला सर्वोत्तम लीला लीलाओं में शिरोमणि उसके लिए जगत में प्रकट हुए अष्टकाली लीला गोलोक वृंदावन में उसको जगत में प्रकाश करने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ कृष्ण अवतरित हुए इसलिए असुर संहार इत्यादि कृष्ण का वास्तविक नहीं बल्कि वो बाह्य कारण इत्यादि सबके रूप में ग्रहण करो इसको स्पष्ट करने के लिए बतलाया नारद जी व्यास जी के पास आए सब कुछ उन्होंने लिखा वेदों का विभाग किया पुराणों को प्रकाश किया महाभारत को प्रकाश किया, उसमें गीता उपनिषद भी आया, किंतु मन प्रसन्न नहीं। और नारद जी ने पूछा, तुमने सब कुछ किया, मन खिन्न क्यों? Why you are unsatisfied? तो उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं जानता हूँ, आप गुरु हैं, आप ही जानते हैं, आप तो वैद्य हैं। उन्होंने कहा, तुमने धर्म अर्थ काम का जैसा वर्णन किया है मोक्ष का, वैसे कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ये नहीं। जो सोदा मैया जिसका आर पार नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, भीतर बाहर नहीं है, उसको बांध दिया प्रेम से, कई वर्णन नहीं किया तुमने। गोपियों के चरणों में गिर गए, अपने मुकुट और बंसी रख दी, न पारे हम निर्बद्ध सन, ये किया नहीं। इन शिलाओं को भक्ति योग के द्वारा समाधि में देख करके उसको लिखो, तब तुम्हारा चित्त प्रसन्न होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंत में कहा गया है, देवकी जन्म बाधो जदुपर जयति जन निवासो देवकी जन्म बाधो जदुपर परिषद त्रिचर ब्रिज नग्न सुस्मित सी मुखेन प्रतिकूल बलितानां वर्धयन कामदेव। कृष्ण का अवतार का कारण ये है और उतरने का, वर्धयन कामदेवम, गोपी कंदर में निर्मल प्रेम को प्रकट करके जगत को शिक्षा देने के लिए कृष्ण। देवकी जन्म बाधो, देवकी के यहाँ जन्म लिया ये बाध है, यशोदा जी का गर्भ से वो पूर्ण रूप से निकले और अपने बाहुओं से भीम और अर्जुन इत्यादि के द्वारा असुरों का संहार किया, सखाओं के साथ में गोचारण के लिए गए और गोपियों के काम को वर्धन किया। इसमें सारा संपूर्ण श्रीमद् भागवत इसी इसी श्लोक में आ जाता है। समस्त होल श्रीमद् भागवत इज इन दिस वन श्लोक। सुखदेव गोस्वामी हैज टोल्ड लाइक दिस। गौर प्रमाण
I come in every age to protect religion and to destroy religion, to protect the sadhus. For this reason I descend. Guru Maharaj giving a nice point, that these are only external reasons for Krishna's appearance. You should not consider these to be the main things. In Sri Chaitanya Charitamrita describes that actually Krishna never killed Kamsa, Krishna never killed Putana, Agasura, Bhakasura. Vishnu inside Krishna, he performs the works of killing demons, protecting religion, protecting the sadhus. All these external activities are the work of Mahavishnu, the Yuga Avatar. These are not the duties of the original personality of Godhead, Brahma, Nandan, Shyam Sundar. This understanding is given clearly in the Srimad Bhagavatam. That Sri Vyasadeva, despite compiling all the Vedas, including Bhagavad Gita, in the Mahabharata, he was still not satisfied until Guru Narada Muni came. Then he said, oh Vyas, you have done so much, but you are not satisfied. Why? Have you described how Krishna has no inside, no outside, no beginning, no middle or end, but your Yashoda mother has bound him out of her prem? Have you described that in your Mahabharata? No, Gurudev, I have not described. Have you described how Krishna is completely controlled by the prem of the gopis? He puts his flute and his peacock feather at the feet of the gopis and prays not Pari Ham Individual Samyam. Have you described that in your Mahabharata? No, Gurudev, I haven't described anything. Then Narada Muni blessed him and he samadhi, Bhakti Yoga Manasa Samyak Pranaki Amale. And he samadhi chants, then Vyasadeva saw the pastimes of Krishna. Therefore, Krishna has appeared in this world primarily to taste lust and to give shiksha to this world what is prema bhakti. But these external things like establishing religion, this is done by Mahavishnu inside Krishna. Therefore, the whole, like putting the ocean inside a bottle, Sri Subhita Goswami has given the whole Srimad Bhagavatam in one verse. Jayati Janani Vaso Janana Devati Janana Bhagavatam. Therefore, the idea that Krishna has appeared as the son of Devaki and Mathura, this is a Bhagavatam. This means, Subhita Goswami says, this is only a theory, because Krishna really has appeared in Vrindavan. He comes here with his two arms, like Arjuna and Bhimsen, to destroy the demons. He resides in all the hearts of his devotees, especially the Vrijavasis, and he manifests his Premlila. By hearing this, then Cupid can be defeated. So these are the real reasons of Krishna's incarnation, to taste this Premlilas.
One very sad news, that the one of the prominent disciple of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Sripad Bhakti Sarup Damodar Maharaj, he has left his body by attack of bomb in Manipur. He was injured, and just tomorrow, yesterday,
he was okay, but yesterday he left his body.
Yesterday he left his body. Now his body is bring. They will bring to Radha Kund, and they will give Samadhi. He was really a Vaishnava. In his home, I have seen Gaur Govinda Maharaj. And secondly, they were real Vaishnava. They used to follow the principles of their guru in real sense. They never admitted what now ISKCON is
propagating.
And he was my bosom friend. He was very humble, very humble, very humble. And he has told his disciples, you can associate with Narayan Maharaj, he is your person. So,
last year he came to you in Govardhan last year in Kartik.
Uh-huh. In Kartik, he met me in Govardhan last year. In Navadvip also. Whenever I used to go to Navadvip, he used to meet me. And helping me, I also used to help him. So we have lost one very good devotee. I pray Krishna, Mahaprabhu, that he should have blessing on him, that his pure bhakti should come in his heart, wherever he is. He is not dead, his soul never will die. So Krishna should be merciful, sprinkle his mercy. Gaur Premanandini.